Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंच में आज के अंत में आप सभी का स्वागत है. कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हैं और हमारे साथ इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य जी. ए के, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद. थैंक यू.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ में राजेश.
बेंचमार्क इंडिसेस एक्सटेंड गेन्स फॉर द फिफ्थ सेशन. Sensex reclaims 74,000 mark, Nifty closes above 22,500 level. India's growth story to continue, inflationary concerns ease with better monsoons, says a finance ministry report. And gold gains 137 rupees in future trade, silver rises by 342 rupees.
शेयर बाजार लगातार पांचवें सत्र में बढ़त के साथ बंद. सेंसेक्स ने दोबारा पार किया 74,000 का आंकड़ा. निफ्टी 22,500 से ऊपर बंद. वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा भारत की तेज वृद्धि रहेगी जारी. बेहतर मॉनसून होने से कम होगा महंगाई से जुड़ा दबाव. और वायदा कारोबार में 137 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ा सोने का भाव. चांदी की चमक 342 रुपए बढ़ी. घरेलू शेयर बाजार आज लगातार पांचवें सत्र में लाभ के साथ बंद हुए. बैंकिंग, वित्तीय और धातु क्षेत्र के शेयरों की भारी बिक्री होने से आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में करीब 500 अंक का उछाल दर्ज किया गया और इसने 74,000 अंक के स्तर को फिर से प्राप्त कर लिया. वहीं निफ्टी 22,550 अंक से ऊपर जाकर बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 486.50 अंक यानी कि 0.66% का उछाल आया और ये 74,339 अंक पर जाकर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 168 अंक यानी कि 0.75% की बढ़त के साथ 22,570 अंक पर पहुंच गया. विस्तारित बाजार की हम बात करें तो बीएससी मिडकैप सूचकांक आज 0.70% ऊपर आ गया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.54% के लाभ के साथ बंद हुआ.
बेंचमार्क इंडिसेस एंडेड हायर फॉर द फिफ्थ स्ट्रेट सेशन टुडे. BSE Sensex rallied nearly 500 points to reclaim the 74,000 mark, while the Nifty closed above the 22,550 level, driven by heavy buying in banking, financial and metal stocks. The BSE Sensex jumped 486.50 points or 0.66% to close at 74,339, while the Nifty 50 rose 168 points or 0.75% to close at 22,570. From the Sensex basket, Axis Bank jumped 6% after the company reported a consolidated net profit of rupees 7,599 crore during the March 2024 quarter. State Bank of India, Nestle India, Sun Pharma, JSW Steel, ITC and HCL Technologies were among the other major gainers. Kotak Mahindra Bank tanked 10.85% after the RBI barred the company from onboarding customers online and issuing credit cards. While Hindustan Unilever, Titan, Bajaj Finance, Maruti and Asian Paints were the other laggards. In the broader market at the BSE, mid-cap sector jumped 0.70%, while the small-cap sector gained 0.54%. In sectoral indices at the BSE, services sector added 1.71%, metal sector gained 1.16%, healthcare sector rose 1%. In contrast, consumer durable sector slipped 0.45% and realty sector fell 0.12% each.
विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 83.32 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में सुस्ती के साथ 105.59 पर कारोबार कर रहा था। एके आज सेंसेक्स ने 74,000 अंक के स्तर को फिर से प्राप्त कर लिया। लगातार पांचवें सत्र में हमने देखा कि ये बढ़त आई हुई है। ये मौजूदा जो हालात हैं मार्केट के या वैश्विक हालात से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, जो आज मार्केट में जो हुआ है उसको आपको बारीकी से देखना है। इसको अगर आप सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स पहले सत्र में, पहले कुछ घंटों में जापानी मार्केट में और कोरियन मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट में जो गिरावट आई, जापान मार्केट में करीबन 2% की गिरावट आई, साउथ कोरियन मार्केट में करीबन 1.7% की गिरावट आई, उसके इन्फ्लुएंस्ड होकर सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे आ गया है। उसके बाद जो कंपनियों की रिजल्ट जो आई आज, चार पांच कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों की और पीएसयू बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसमें प्रेरित होकर मैं समझता हूं ये मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर आ गए हैं, और इसीलिए जो मार्केट क्लोज हुआ है वो करीबन 500 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। ये यही दर्शाता है कि जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ही अपने एक जो प्रेजेंस दिखा रहा है अपना
जी।
और जो जो इंटरनेशनल मार्केट की जो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकती है उसको ओवरकम कर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर रियल्टी जो रियल एस्टेट जो सेक्टर की स्टॉक्स जो हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की स्टॉक्स जो हैं, ये दो सेक्टर को छोड़ दें आप, तो अब बाकी सब सेक्टर्स में बढ़ावट आई है। सबसे ज्यादा बढ़ावट आई है पीएसयू बैंक्स में
जी।
इसका मतलब ये दिखा रहा है कि पीएसयू बैंक्स की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है और जो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कासा रिटर्न्स जो हैं, वो अभी भी जो अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही हैं उससे मार्केट काफी अनुप्रेरित है, और इसीलिए मार्केट का मैं समझता हूं आज की तारीख में आज जो आपके जो उछाल दिखा है आपको वो उसी का एक प्रतिफलन है।
सो हाउ मच इज द एनपीए कॉन्ट्रीब्यूशन?
यू आर राइट, यू नो द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द हेल्थ ऑफ द पीएसयू बैंकिंग सेक्टर एंड द इम्प्रूवमेंट इन दैट हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट। While there are some analysts who believe that we should wait for the next quarter to take a final call on the actual strength of the PSU banking sector, but the PSU banking sector has done very, very well in the last three quarters, and that is what is giving the valuation strength to this BAQ stocks. Even though if you look at the banking index today, even though there is a private sector bank, Kotak Mahindra Bank, which fell by almost 10-12%, depending on what is the base that you take, the banking index has actually risen very sharply. So what it means is that, yes, there are some localized areas of concern, but on the whole, Axis Bank has done very well.
Yes.
So you
6%.
Yeah. Hmm. So it is a PSU bank, private sector banks, barring the bank which has been ticked off by the central bank regulator, you are doing well. So on the whole, I would say that today was a day when the performance of the economy in terms of growth prospects was speaking.
So will the regulatory restrictions on Kotak Bank weigh on the stock?
Well, in the short to medium term, yes, it should. Because remember that this bank is a technology-oriented bank. The bank's almost over 98% or 99% of new businesses, they come from online banking and online onboarding of credit cards.
Yeah.
So when the curbs are in place, it will be restrained from accepting new accounts, and therefore its CASA, which is current account and savings account income, that will take a hit in an incremental basis. So till such problems are sorted out, the regulatory problems are sorted out, I think this bank stocks will reflect some weaknesses. But remember, these problems have been faced by many other. HDFC Bank 4 years ago, 2020, had gone through a similar phase. For about 6 to 7 months, HDFC Bank stocks were there. Till 2 days ago, there was a curb on MM Finance, Mahindra and Mahindra Finance. So RBI has been very, very closely monitoring the financial sector. There's a Paytm problem. There was JP Morgan problem. So the central bank has been raising issues about retail loan, worried that there should be no bubble.
How do you view the banking sector?
I think
should we say that PSU is one side and the private on the other side?
No, I think the overall health of the banking sector is quite strong, but there are issues about loans being given to retail sector, loans being given to the construction sector, which may not be backed with corresponding increase in other indicators. Like, for example, in the construction sector, if you're not seeing a similar rise in cement sales, you start wondering that where this loan money taken for construction purposes, where this money loans taken from retail purposes are going. So there are worries, but the strength of the banking sector in terms of the non-performing asset that you referred to just a while ago, that on NPA is one of its best moments, where, if I'm not mistaken, is around 3% or so.
AK, वापस अगर शेयर मार्केट पर हम लौट करके आते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर अपना एक बैलेंस बना करके चल रहा है और जो बाहर के जितना असर हमारे मार्केट पर पड़ा है बीते दिनों में उस दौरान भी ये देखा गया कि एफएमसीजी सेक्टर ने एक बैलेंस बना करके ही अपने आउटपुट दिए हैं जिससे जो निवेशक हैं निराश नहीं हुए हैं. तो क्या देखते हैं किस तरह के सेक्टर्स में अभी अगर पैसा लोग लगाना चाहते हैं तो कैसा रहेगा?
देखिए, एफएमसीजी सेक्टर एक कंजम्पशन स्टॉक है ये और इसका वाइड स्प्रेड मार्केट है और से एक नेचुरल जो डिमांड से ये फ्यूल्ड होती है. पर एफएमसीजी सेक्टर में कोई हाई प्रोफाइल कंपनीज में रिसेंटली इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रेगुलेटर के नजर में आई है.
जी,
जैसे आप बॉन्डविटा की बात कीजिए या अगर आप जो मसाले की बात कीजिए, एमडीएच के मसाले. सो इन मसालों के एफएमसीजी जो कंपनीज हैं इनके ऊपर थोड़ा रेगुलेटरी दबाव आया है और उसी से जो एफएमसीजी सेक्टर की जो एक मीडियम टर्म जो प्रॉस्पेक्ट है उसमें थोड़ी बहुत एक डाउट आ रहा है. पर एसेंशियली एक कंजम्पशन इकोनॉमी में एफएमसीजी सेक्टर एक स्टेडी ग्रोथ बना के रखने की उम्मीद करता है. उसीलिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान लीवर के स्टॉक में भी आज थोड़ी बहुत डिक्लाइन आई है.
इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स जो हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है?
इसमें अगर देखिए जो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं आपके, मिड कैप स्टॉक्स अभी भी उनकी जो रिस्पॉन्स है, रेजिलियंस जो है वो स्ट्रांग है. स्मॉल कैप में उतना नहीं है क्योंकि वो काफी आगे बढ़ चुके हैं. स्मॉल कैप मिड कैप में अगले 3 महीने 4 महीने 5 महीने मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के मॉनिटर करते हुए कंपनी स्पेसिफिक कॉल लेना जरूरी है.
सो एकेबी, द मार्केट कंटिन्यूज टू एग्जिबिट अ बुलिश ट्रेंड अनअफेक्टेड बाय द नेगेटिव फैक्टर्स सच एज इंक्रीजिंग और इंक्रीज्ड बॉन्ड यील्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर द 10-year यील्ड रिमेन्स अबव 4.6%, and not to forget the geopolitical tensions. How do you view this?
Well, you know, as long as the Fed does not give a clear indication of its a departure from its current policy of keeping the interest rates elevated, I think the yield problem that you refer to is not going to go away. And that is also connecting the Indian economy and Indian markets to that zone. Now, the latest data that has come on the U.S. economy is first quarter, the current calendar year growth is coming to around 1.4% or so. This is quite a depressing number because they were expecting a higher number. Mm-hmm. Now, if the higher number had come, then probably the idea of Mr. Jeremy Powell to continue higher for longer approach intact. But clearly with this growth number in available, Mr. Jeremy Powell in the next review may will have to take a fresh look. Now, if that happens, then I would say the bond yield challenges that you are talking about will be met somewhat. And in that process, some of the money that is staying invested in the U.S. may start looking outwards towards the emerging economies, including India's.
Let's quickly look at the FIIs and the DIIs. We mentioned a while back they took out 2,500 nearly crore rupees from the market, whereas the DIIs pumped in 3,809 crores. So what is the impetus? What is the motivator for them? You know, because of which they continue to invest in the Indian markets. I'm talking about the DIIs.
Absolutely, because the DIIs are looking at the Indian market dynamics and the growth projections and the earnings estimates. Now, going by all the earnings so far, the results that have come out, including even the IT companies, the market is pretty enthusiastic and positive on continued earnings growth. Now, in that kind of a scenario, I would say the DII will continue to pump in more money, even as the foreign institutional investors will go back, because the returns there are more, as Mr. Jeremy Powell is keeping it higher for longer.
Yeah.
एक ही अभी कुछ कंपनियों के ही मतलब नाम तो नहीं लेंगे हम बात करते हैं कुछ कंपनियों ने एक स्टार्टअप के रूप में अपनी शुरुआत की एक अच्छी पकड़ बनाई मार्केट में और उन्होंने अपने आईपीओ भी लॉन्च किए और अब कुछ और कंपनीज भी अपने आईपीओ लेकर के आ रही हैं अगर हम एक तुलनात्मक नजरिए से देखें तो बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़ा है इन कंपनीज के अगर उन्होंने शेयर परचेज किए हैं लेकिन जो हालिया जो हमने दौर देखा उससे लोगों को कहीं ना कहीं एक शायद धक्का भी लगा है देख करके कि ऐसा भी हो सकता है तो मौजूदा दौर में क्या सलाह देना चाहेंगे आप निवेशकों को यदि वो इन कंपनियों की तरफ जाना चाहते हैं
मैं समझता हूं कि आईपीओ स्टार्टअप आईपीओ को बहुत बारीकी से देखना चाहिए स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल क्या है इस आईपीओ की कंपनी के पीछे क्या है उसको देखकर ही ये नहीं है कि एक भीड़ में एक दंगल में आप चले जा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बिजनेस आइडिया की अपनी ही एक यूनिक एक 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 अपील होती है बिजनेस रेलेवेंस होती है और ये नहीं कि हर आईपीओ अच्छी है तो चल रहा है और स्टार्टअप में एक बहुत बड़ा एक धक्का भी पहुंचाता सेक्टर को जो एक फंडिंग विंटर जिसे हम कहते हैं कि फंडिंग की शीतकालीन अवस्था जिससे कि फंडिंग कम हो गई है उससे भी मार्केट में आईपीओ जो स्टार्टअप आईपीओ में थोड़ा बहुत दबाव आया था तो सब कुछ को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि कंपनी स्पेसिफिक आइडिया स्पेसिफिक IPOs, startups की देखनी चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए
AKP, there's been a sluggish volatility index which hints at hopes for stability in the upcoming elections and geopolitical tensions. And there are concerns lingering over escalating conflict in the Middle East, albeit tempered by a drop in oil prices. How do you view that?
Well, you know, I think geopolitical tensions are very real and they do impact market sentiments because they do impact not only your trade, your import and export, as well as India's key import of fuels. Now, India imports almost 88% of its total requirement from whether it is Russia or Saudi Arabia or other countries. So, when you are so much dependent on fuel to keep your economy wheels running, then naturally these geopolitical tensions will have an adverse impact on economic growth prospects and on the inflation outlook.
और अब एशियाई यूरोपीय बाजार पर नजर डालें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। जापान का निक्केई सूचकांक 2.21% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.79% का नुकसान दर्ज हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.22% की गिरावट आई। वहीं हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.48% का उछाल आया और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.26% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में भी मिलाजुला रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में 0.63% की बढ़त देखी गई। जर्मनी का डेक्स 0.56% लुढ़क गया और फ्रांस के कैक में 0.48% की सुस्ती आई। एके अपने जापान का जिक्र किया था, काफी गिरावट आई वहां पर 2.21% की। अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो जैसे जैसे कंट्रीज वाइज हम इंडिया की तरफ आते गए हैं वैसे वैसे सेंसेक्स ऊपर चढ़ता गया, मतलब शेयर बाजार ऊपर चढ़ता गया है।
एकदम आपने सही एकदम इसका एक
जी, जी।
इसका दिया है आपने। जिस तरह से हम यहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया की तरफ आ रहे हैं, मार्केट रिकवर कर रही है
जी।
और मुझे ये लग रहा है कि ये शायद ये चेंज जो है ये थोड़ी बहुत रुक जाएगी जब वो अमेरिका के पास जाएगी, क्योंकि वहां पे जो जीडीपी के नंबर्स जो नए आ रहे हैं वो काफी आशाजनक नहीं है। तो हमें यही देखना है कि किस तरह से जो ग्लोबल मार्केट्स में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो हमारी इकोनॉमी को किस तरह से वो बढ़ावा और भी दे सकते हैं। इस वक्त लगता है कि आउटलुक मिक्स्ड है, मिश्रित आउटलुक है।
बट एज वी मूव टुवर्ड्स यूएस एज यू मेंशन whatever happens there has a major repercussion across.
Oh, absolutely, absolutely, because this is the world's largest economy.
Yeah. And there, the key U.S. stocks ended mixed yesterday. Benchmark S&P 500 closed higher in choppy trading as investors weighed an uptick in treasury yields amid positive corporate results, particularly from technology giants. The S&P 500 gained 0.02%. The Nasdaq Composite added 0.10%. However, the Dow Jones Industrial Average fell 0.11%. It could be all eyes are actually on the Friday's inflation report amidst Fed Reserve's data-dependent stance. What are your expectations?
My sense is that inflation will continue to bother policymakers there. It is not going to come down because the economy, the U.S. economy continues to remain heated. The job market is a clear indicator of that. Then the GDP data that we have just received pertains to is a lagging data in a sense that it talks about the first quarter. So what is happening right now is that employment is good. And prices are still not falling. So therefore, my sense is that the Fed will continue to remain under pressure in bringing the inflation rate down to their target of 2% till they go in for any fresh review of the interest rates.
Okay. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन के ऐप बाइटडांस को मार्केट से टिकटॉक ऐप हटाने या फिर इस ऐप को अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। यह कानून उन चिंताओं के जवाब में पारित हुआ है जिसमें टिकटॉक चीनी अधिकारियों को यूजर डेटा तक पहुंच प्रदान कर सकता है। अमरीकी सीनेट ने कल इस विवादास्पद ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी। टिकटॉक ने इस कानून को असंवैधानिक बताया और कहा कि वो इसे अदालत में चुनौती देगा। यह कानून इसराइल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य अमरीकी साझेदारों के लिए सैन्य सहायता पहुंचाने सहित 4 विधेयकों के पैकेज के भाग के रूप में पारित किया गया है। इस कानून को 79 सीनेटरों की सहमति प्राप्त हुई थी।
How do you view this?
Well, I think it's a very, very significant step. Remember that India also banned through an executive order TikTok from India about 4 years ago. This is a legislative ban. This affects 170 million Americans who use TikTok. In India, it was 200 million. But India did it in response to what China was doing with Indian borders. It was national security concern. And also, Chinese companies were playing certain games which the Indian government did not like, so it was banned. But in the U.S., similar concern of national security concerns. But this will not be implemented immediately. It may take around 6 to 8 months before it actually gets implemented, by which time, remember, the U.S. will go into an election phase.
So it might be reversed?
You do not know. So it might become an election issue.
Moving on, the monthly economic review for March released by Finance Ministry has stated that India will continue to be the fastest growing major economy, with positive assessments of the growth outlook for the current financial year for India by international organizations and the RBI. The report said, despite global headwinds, India asserts its pivotal role in supporting the global growth trajectory. Also, it said, better monsoon projections eases inflationary concerns. These remarks have been made at a time when various domestic and global agencies have raised India's growth estimate for current fiscal. Last week, International Monetary Fund upped its growth projection for India by 30 basis points to 6.8% for the current financial year. Earlier, Asian Development Bank revised its projection to 7% from 6.7% for the current fiscal. RBI estimates growth to be 7%. The report said, resilient growth, robust economic activity indicators, price stability and steady external sector performance continue to support India's promising economic performance amidst uncertain global conditions. This is quite an encouraging report, and considering it talks about inflation management in a positive way, particularly monsoon projections, which will ease
inflationary concerns. I think this is a monthly economic report from the Union Finance Ministry, and I think it talks about the growth prospects. It underlines the recent projections made by the Asian Development Bank and the International Monetary Fund, which have all revised India's growth rates upwards. But the most important point that you referred to is projection on inflation, and this is critically dependent on a very positive monsoon prediction by the Indian Meteorological Department a few days ago,
yes,
where it said that India will see bountiful rains. Now, if you see bountiful rains, then what happens is that the inflation as a demon or as a problem area, particularly at a time when inflation needs to be contained so that the interest rates can become brought down, will be very, very critical. So the RBI's job will probably get little better and easier when inflation is brought truly well below 4%, which is the target rate in India, and then the Monetary Policy Authority can actually, its committee can decide on its timeline and schedule for bringing down the interest rate.
एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी नेतृत्व शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में नवाचार और स्थिरता के लिए नजरिया पेश करना, सर्वोत्तम विचारों तथा रणनीतियों को साझा करने के लिए उद्योग जगत के लोगों को एक साथ लाना था।
Oil prices were trading marginally higher today after settling lower the previous day as signs of retreating fuel demand in the U.S., the world's biggest oil user, contended with widening conflict risks in the West Asia. The Brent crude oil futures was higher at $88.07, whereas West Texas Intermediate was up at $82.84 when reports last came in. Very, very quickly, China is building its oil reserves. We only have, as we were talking, only 1% of the...
Well, the international norm is around 90 days of demand needs to be in reserves.
Okay.
We have got around 10 days. Mm-hmm. So we need to build our reserves if we want to keep these fluctuations at bay.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार के लिए सोना बढ़त के साथ कारोबार आज कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 137 रुपए यानी कि 0.19% की तेजी के साथ 71,187 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 342 रुपए यानी कि 0.42% के उछाल के साथ 82,576 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना दिन के कारोबार के दौरान 0.14% के उछाल के साथ $2,341 प्रति औंस के स्तर पर रहा। एक ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार,
धन्यवाद। Benchmark indices extend gains for the fifth session. Sensex reclaims 74,000 mark. Nifty closes above 22,500 level. India's growth story to continue. Inflationary concerns ease with better monsoon, says a Finance Ministry report. And gold gains 137 rupees in futures trade. Silver rises by 342 rupees. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra.